ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा की पालना में पल रहे हैं। कल सभी ने ईश्वरीय पालना का आनंद लिया ही है। उस पालना में मनुष्य जीवन के लिए एक बहुत बड़ी पालना है, भोजन। कल बाबा ने भी ब्रह्मा भोजन की महिमा की, तो आप सभी अपने अपने घरों में भी ब्रह्मा भोजन खाते हैं या केवल यहीं? भाई बताएंगे, यहाँ भी ब्रह्मा भोजन या घरों में भी ब्रह्मा भोजन? घरों में भी ब्रह्मा भोजन खाते हैं ना? एक बहुत सुंदर रहस्य हम सभी को प्रैक्टिकल में याद भी रखना है और अपने जीवन में लाना भी है। सभी ने साकार मुरलियों की ये बात सुनी है कि जो बच्चे बाबा के बन गए वो कभी भूखे नहीं रह सकते। सुनी है सभी ने? अब बाबा ने एक और बहुत अच्छी बात कही है, सभी को इस बात पर ध्यान देना है। और हम तीन चार दिन के पीछे की मुरलियों को लेकर आज के इस विषय पर भी चर्चा करेंगे और कुछ जीवन से उपयोगी बातों पर भी। बाबा ने कहा, जो आत्माएं सच्चे दिल से अपना सब कुछ मेरे अर्पित कर देती हैं, जिनके दिल से ये आवाज निकलती है कि मेरा सब कुछ तेरा, परिवार, धन संपत्ति, काम धंधे, वो मानो भोलेनाथ के भंडारे के ही खाते हैं। तो उनका परिवार यज्ञ हो गया। हम सभी इस बात पे जरा ध्यान दें कि हम अपने परिवार को भी यज्ञ बना लें, और इससे भी अच्छा कि हम अपने जीवन को भी यज्ञ बना दें। तो ये बहुत श्रेष्ठ बात है कि हम इस समय समर्पित भाव धारण करें। जिन्होंने आप में से लौकिक में गीता पढ़ी हो, गीता में समर्पण भाव का बहुत ज्यादा वर्णन है। सब कुछ तेरा, कल की मुरली में भी था, मेरे को तेरे में बदल दो। तो जो ऐसा करते हैं वो मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। और बाबा ने जोड़ दिया कि उनका भंडारा भोलेनाथ का भंडारा ही होता है, इसलिए वो भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहते हैं। इस बात को याद रखते हुए हम बेगमपुर के बादशाह बन जाएं। कल की मुरली में एक बहुत सुंदर शब्द आप सभी ने नोट किया होगा कि बादशाह बनकर तो देखो। याद है सभी को? संसार में अनेक चिंताएं हैं। कल बाबा ने हम सभी के जीवन की महानताओं पर हमारा ध्यान खिंचवाया। तुम सभी उठते भी बेफिकर, सारा दिन चलते फिरते कर्म करते भी बेफिकर और सोते भी बेफिकर हो। संसार में इन सब चीजों के साथ जुड़ा हुआ है तनाव और चिंताएं। मनुष्य उठता है तो कोई न कोई चिंता उसके सामने मुंह बाय खड़ी रहती है, सोता है तो किसी तनाव में सोता है। सारा दिन कर्म करते हुए कोई दबाव मनुष्य के मन पर बना रहता है। हम सभी बेगमपुर के बादशाह बन जाएं, संभव है? आप सभी जो अपने अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, जहाँ भी चिंताएं हैं, कलयुग के अंत में हम जी रहे हैं, चिंताएं समस्याएं अनेक परिस्थितियां यहाँ ये सब हैं, संतु बेगमपुर के बाद सब अनजाना, क्या करेंगे हम इसके लिए। मैं भोजन के साथ इस बात को भी साथ लेकर चलूं, मैंने ऐसी कितनी माताएं देखी हैं बाबा के ज्ञान में, जो अपने जीवन को इस भरोसे चलाती हैं कि बाबा मेरे साथ है। बहुत सुंदर कॉन्शियसनेस है ये, बहुत सुंदर स्मृति है, भगवान जिन्हें साथ दे रहा हो उन्हें और किसी के साथ की तो आवश्यकता ही नहीं। मैं अपने लिए बहुत समय से एक स्लोगन रखा, आप सब भी उस पर अभ्यास करें, ध्यान दें इस बात पर आप सभी, हमारी चिंता स्वयं भगवान करता है, हमें अपनी चिंता करने की क्या जरूरत है, और भला हम अपनी चिंता करके करेंगे भी क्या। आप देख लो अपने जीवन में रोज की बातों से हम चिंताएं करते रहें, कुछ होता है सिवाय इसके कि हमारी परेशानी बढ़े, हमारी स्थिति बिगड़ जाए। तो हम अपने पास ये स्लोगन रख लें कि हमारी चिंता तुम करो, हमें क्या जरूरत है। जैसे लौकिक में बच्चे चिंता नहीं करते, माँ बाप चिंता करते हैं, हम भी ऐसा संकल्प कर लें, हमारी चिंता ऊपर वाला करता है, हमें चिंता की जरूरत नहीं। और ये सच्ची बात है, आप अनुभव कर लें, जो स्वयं निश्चिंत रहते हैं उनकी चिंता बाबा करता है, जो स्वयं चिंतित रहते हैं उनके लिए बाबा निश्चिंत रहता है। तो क्या करना चाहिए हमें, निश्चिंत जीवन का सुख भगवान साथ दे रहा है। कैसे मिलता है उसका साथ, केवल इस स्मृति को मजबूत कर दें, भगवान हमें साथ दे रहा है, वो हमारा साथी है। अभी 4 दिन पहले की मुरली आई थी, बाबा तुम्हारा साजन है, भोजन उसे खिलाओ पहले। भारत में तो परिवारों में ये नियम है ना, माताएं पहले पति को भोजन कराती हैं फिर खुद करती हैं। विदेशों में ये नियम नहीं है। अब आप कोई विदेशों में गए हो या उस कल्चर को देखा हो तो वहाँ तो हर व्यक्ति अलग अलग है। पति आएगा अपना भोजन बनाया और खाया, पत्नी आई अपना भोजन बनाया खाया, बच्चों ने अपना किया। तो मैं हंसी में कहा करता हूँ, जब बाबा कहते हैं ना कि मैं भारत में आता हूँ, हमारे यहाँ विदेशी बहुत आते हैं, उन्हें कभी कभी संकल्प चलता है कि हमारे देश में बाबा आ जाए तो उसको क्या मुश्किलात है, ऊपर से नीचे उतरने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उधर आए या इधर आए। लेकिन मैं कहा करता हूँ कि अगर तुम्हारे पास बाबा आ जाए तो एक तो तुम उसे बॉयल सब्जी और ब्रेड के अलावा कुछ खिलाओगे नहीं, भोग भी नहीं लगाएगा कोई बाबा को, है ना। और ये जो भारत की महान कल्चर है, पहले पति पहले बड़े, तो इसका महत्व हम अपने यहाँ देखते हैं। आप सबने देखा बाबा को किस तरह भोग लगता है, जो प्यार का सागर है वो सूखा तो नहीं है ना, कि हम कह दें बहुत सारे फ्रूट बाजार में रखे आप ही खा लो, हमें भोग लगाने की क्या जरूरत है। मैं आप सभी माताओं का इस बात पर ध्यान दिलाऊं कि सभी को अपने घरों में रोज भोग अवश्य लगाना है। भाई भी ध्यान दिलाएं, जो भाई लोग अकेले ज्ञान में चलते हैं वो भी यदि करें, क्या महत्व है भोग लगाने का। बाबा ने अनेक बार कहा है, और ये 4 दिन पहले की जो मुरली थी इसमें भी कहा कि जब तुम मुझे याद करते हो भोजन पर, तो मैं तुम्हारा भोजन स्वीकार करने आ जाता हूँ। बाबा आ जाता है, सबके पास आ जाता है, लाखों आत्माएं उसे एक साथ याद करें, सबका भोजन स्वीकार करने वो आ जाता है। और ये हमारा कर्तव्य है, ये जो मालिक है जिसने हमें सब कुछ दिया है, पहले हम उसे खिलाएं फिर खाएं। आपको याद होगी वो मुरली, चार दिन पहले की, पांच दिन पहले की, यदि तुम मेरी याद में भोजन नहीं करोगे तो माया बिल्ली तुम्हारा भोजन खा के शक्तिशाली बन जाएगी, और जब वो शक्तिशाली बन जाएगी तो शक्तिशाली होकर हमसे लड़ेगी। तो क्यों हम माया को शक्तिशाली बनाए जिसे हमें हरा देना है। उस दिन से आपको भी होता होगा, मुझे तो बहुत होने लगा, जैसे ही भोजन शुरू करें ये बात याद आ जाती है कि कहीं माया बिल्ली तो नहीं खा रही बीच में। कितना अच्छा ये संकल्प है, यदि हम ये संकल्प करते हैं तो हमारी योग युक्त की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। भोजन हमारे शरीर की पालना में सबसे बड़ी चीज है, इसको हम यदि योग युक्त बना लें तो न केवल मन बुद्धि पवित्र हो जाएंगी लेकिन हम अनेक बीमारियों से भी मुक्त हो सकते हैं। मैं इस विषय में जो आज तक मैंने बहुत भाई बहनों से कराया है उसका सार आप सभी के सामने रख लेता हूँ। वो माताएं जो कहती हैं ये एक बहुत बड़ी समस्या है कलयुग के अंत में कि बच्चे कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, या जिन माताओं को अपने पतियों की ओर से किसी भी तरह की परेशानी है, वो यदि उन्हें योगयुक्त भोजन खिलाएं तो वो सब कुछ ठीक हो सकता है। भोजन और ये प्रकृति, जो हमारे चारों ओर ये प्रकृति है, हमें याद रखना चाहिए। अब सभी से बाहर वाले भी ये प्रश्न कर सकते हैं और ये बात बहुत स्पष्ट रूप से हमारे ज्ञान में रहे कि प्रकृति मनुष्य के वाइब्रेशंस के प्रति बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव का अर्थ है कि ये प्रकृति हमारे वाइब्रेशंस को तेजी से ग्रहण कर लेती है। आपने अपने घर में जो सब्जियां लाकर रखी हैं, फ्रिज में रख दी हैं, उन सब में आपके घर के सारे वाइब्रेशंस भरते जाते हैं। तो प्रकृति में चारों ओर तांत्रिकता भरी हुई है, हमारे भोजन में भी वो आ गई है। अब हमारा कर्तव्य है कि जब हम उसे बनाएं और फिर खाएं तो अपने अच्छे वाइब्रेशंस डालें। भोजन के संबंध में, भोजन में प्यार के वाइब्रेशंस भरना बहुत बड़ा काम है। आप सभी को मालूम रहे, यहाँ यदि कोई डॉक्टर बैठे हों वो जानते होंगे, नहीं तो जान लेना चाहिए, प्यार के अंदर सबसे बड़ी हीलिंग पावर है। हीलिंग पावर का अर्थ है मनुष्य की बीमारी को ठीक करने की बहुत बड़ी शक्ति प्यार के अंदर है। देशों में इस एक चीज पर रिसर्च चली है और चल रही है कि माँ के हाथ का प्यार का स्पर्श बच्चों को अनेक बीमारियों से मुक्त कर सकता है। और जिन मनुष्यों को जीवन में प्यार नहीं मिलता उनकी बीमारी ज्यादा बढ़ती है। इसलिए भोजन में यदि प्यार के वाइब्रेशन भर दें तो भोजन औषधि का काम करेगा। कैसे प्यार भरा जाएगा भोजन में, ऐसे तो सभी जानते हैं, लेकिन बाबा जो हमारा परम प्रियतम है, जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हमें भोजन उसे खिलाना है। उसके परिवार को खिलाना है, बहुत प्यार से भोजन बनाएं, जरा भी क्रोध या चिड़चिड़ापन भोजन बनाते हुए न हो, इसका यदि ध्यान रखेंगे तो भोजन बहुत शक्तिशाली होगा। आजकल के भोजन में स्थूल रूप से भी शक्तियाँ बहुत कम हैं। हम सबको ये भी जानना चाहिए कि भोजन, अन्न, दूध, सब्जियाँ, ये हमें बहुत ज्यादा शक्तियाँ आजकल नहीं दे रहे हैं। प्रकृति में बनावटी चीजों का प्रयोग करके अन्न उगाया जा रहा है, इसलिए ये और भी आवश्यक हो जाता है कि हम योग की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्यार की शक्ति भोजन में भरते चलें। मुझे अपने जीवन की एक घटना याद रहती है, एक बहुत सुंदर सीन मेरे सामने घटित हुआ। जैसे बाबा अब आते हैं यहाँ स्टेज पर, बहुत ऑफिशियल ये प्रोग्राम चलता है, शुरू में ऐसा नहीं था। ये बात सन 70 की है लगभग। तो बाबा एक दिन अपने कमरे में आए थे मधुबन में, तो लच्छू बहन, एक बहन है पुरानी, वो सब भोग लगाती थी, तो बिल्कुल ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं चलता था। तो सभी जब मिलके चले गए बाबा से, 10-10:30 बजे होंगे, बाबा ने लच्छू बहन को कहा मेरा नाम लेकर के उसे बुलाओ। हम लोग किचन में नए नए आए थे, तो बाबा का बहुत प्यार था, तो हम तो लगभग सोने को थे, तो मैं और मेरे साथ की एक और थी वल्लभ भाई, हम दोनों ऐसे ही चादर ओढ़ के बाबा के सामने आ गए। तो सीन बहुत सुंदर था, आप शायद इसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वहाँ पर बाबा गुलजार दादी के तन में अकेले बैठे थे, कोई नहीं था। ये सब भोग लेने गए थे, बाबा ने उसको कहा कि दीदी दादी को बुलाओ और मुझे बुलाओ। तो हम पहुँचे तो हम तो एकदम आनंद से भरपूर। तो बाबा ने मुझे कहा पहले, वो बात बहुत यूजफुल है, मुझे बहुत काम आई तब से। तो मेरे से पूछा कि तुम भोजन बनाने की सेवा तुम्हें मिली है, संकल्प तो नहीं चलते? तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि जब हम समर्पित होते हैं और हुए, तो अपने सभी अहम को एक तरफ रख कर होते हैं कि जो बाबा सेवा कराएगा वो हम सब करेंगे। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा भोजन बनाने की सेवा छोटी सेवा नहीं समझो। कहा कि यदि एक बार में स्नेह से और योग युक्त होकर भोजन बनाया जाए तो उतना ही फल मिलेगा जितना 1000 आत्माओं को संदेश देने का मिलता है। तो बहुत ही अच्छी बात थी हमारे लिए। तो इस बात ने हमारी उमंगों को और बढ़ा दिया कि हम चारों ओर से अपनी बुद्धि को समेट कर योगयुक्त होकर भोजन बनाएं। और बहुत चीजें देखी। बाबा ने तब एक बात कही थी मुरलियों में कि जब तुम्हें योगयुक्त भोजन मिलने लगे तो तुम्हारी सेवाएं बहुत वृद्धि को प्राप्त करेंगी। इसको मैं आपको इस तरह कहूंगा कि जिस घर में योग युक्त ब्रह्मा भोजन बनने लगे उस घर का संपूर्ण कल्याण अति शीघ्र हो जाएगा। मैं माताओं को कहूं कि आप अपने घरों की सभी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं, अपने घर में देवत्व की स्थापना कर सकती हैं, यदि भोजन योग युक्त बना दिया जाए तो। क्योंकि भोजन सीधा हमारे शरीर में जाता है, ब्रेन पर अपना प्रभाव डालता है, हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उन पर अपना प्रभाव डालता है। योग युक्त भोजन खाने से हमें अनेक फायदे हैं। डॉक्टर बताते हैं बात करते हुए भोजन नहीं करो, वायु अंदर जाएगी, गैस पैदा करेगी, कठिनाई होगी। योगयुक्त भोजन करेंगे, आपे ही हम सुख रहेंगे। ठीक बात है ना? भोजन बहुत प्रसन्नता से करो तो टॉनिक बन जाएगा भोजन। हम योगयुक्त भोजन खाएंगे तो बहुत प्रसन्नता से खाएंगे। एक टुकड़ा बाबा को खिलाओ, दूसरा स्वयं खाओ। हर चीज पर यह अभ्यास करो भोजन खाते हुए, पहले तुम खाओ फिर हम खाएं। डॉक्टर्स कहते हैं भोजन धीरे धीरे खाओ, चबाकर खाओ, अनेक बीमारियों से मुक्त होने का तरीका है। हम योगयुक्त भोजन करेंगे तो धीमे करेंगे। इसलिए जो एक आदत पड़ गई है जल्दीबाजी में भोजन करना, वो भी एक टेंशन रहती है मनुष्य को, जल्दी करो, वहाँ जाना है वहाँ जाना है। इसको समाप्त करके भोजन के महत्व को समझते हुए हम इसमें विशेष समय दें। माताएं तो ऐसा कर लें कि भोजन का समय तपस्या का समय है। जो ये कहते हैं कि हमें योग करने की फुर्सत नहीं मिलती, वो अनुभव करके देखें कि भोजन बनाते समय योग सबसे अच्छा लगेगा। जो भाई भी भोजन बनाते हैं उनको ये अनुभव भी होगा कि सबसे सुंदर योग भोजन बनाते हुए लगता है, क्योंकि ऐसा दिखाई देता है, अनुभव होता है कि शायद, मैं शायद कहूँ या ये संपूर्ण रियलिटी है कि जब हम भोजन बनाते हैं, थोड़ा भी बाबा को याद करेंगे तो बाबा की दृष्टि हमारी तरफ आ जाती है, उसकी किरणें हमारे ऊपर पड़ने लगती हैं और हमारा चित्त बहुत सहज भाव से स्थिर हो जाता है। हमें याद रखना चाहिए, जो भाई बहने अपने इस अलौकिक जीवन में बहुत सुंदर अनुभव करना चाहते हैं, उन्हें अपनी मन और बुद्धि को स्थिर करने का संपूर्ण ध्यान देना चाहिए। मन और बुद्धि के लिए विस्तार बहुत है, जहाँ तहाँ वो भटकते हैं। जब किसी के अंदर व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो क्या होता है, जरा इस पर ध्यान दें। व्यर्थ संकल्पों से पैदा हुई निगेटिव एनर्जी अपना प्रभाव हमारे ब्रेन पर छोड़ जाती है। माताएं भी समझ लें, जब हम व्यर्थ सोचते हैं तो उसका एक सूक्ष्म प्रभाव हमारे दिमाग पर रह जाता है, जो लंबा काल ब्रेन की एक्टिविटी को प्रभावित करता है। इसलिए शुद्ध संकल्पों के द्वारा, अच्छे और शक्तिशाली विचारों के द्वारा व्यर्थ संकल्पों को कम करके चलना ये बहुत आवश्यक है। इस संपूर्ण सृष्टि के परिवर्तन के लिए हम सभी दो बातों का बहुत ध्यान रखें, जो बाबा के इस विश्व कल्याण के कार्य में अधिकतम मददगार बनना चाहते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि इस श्रेष्ठ कर्तव्य के लिए, या मैं ये कहूँ कि इस संपूर्ण सृष्टि चक्र में विशेष रूप से द्वापर युग से और कलयुग अंत तक उन आत्माओं का इस सृष्टि पर संपूर्ण महत्व है जिनके पास पवित्रता की शक्ति है और जिनके मन में संकल्प कम से कम चलते हों। ऐसी आत्माएं इस सृष्टि चक्र का आधार हैं। उनकी उपस्थिति संसार के अस्तित्व के लिए, यहाँ सुख शांति कायम रहे इसके लिए, यहाँ मानवता कायम रहे इसके लिए बहुत आवश्यक है। जो बहुत अच्छा चिंतन करते हैं आप में से, वो इस बात पर विचार करें कि जो मनुष्य निसंकल्प हो जाए, देखो आप अपने अपने से बात करो, जब हमारा मन सभी संकल्पों से मुक्त हो जाए तब हमारे मन से बहुत शक्तिशाली एनर्जी वाइब्रेट होती है, तब हमारे अंदर से बहुत शक्तिशाली तरंगे फैलती हैं चारों ओर, जो इस संसार के वातावरण को बदलने में बहुत बड़ा काम करती है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमारा अन्न और हमारा संग हमें निर्संकल्प बनाने वाला हो, इस चीज पर फोकस करते हुए हम अपने अन्न और अपने संग का निर्धारण करें। संग ऐसी ही चीज है, हम कितने ही सालों से देखते आ रहे हैं, कितने ही कुमार बाबा के पास आए और चले गए, कितने ही अधर कुमार बाबा के पास आए और चले गए, कितनी ही कन्याएं, कितनी माना लाखों की संख्या हो गई होगी, आए और चले गए। भगवान का साथ एक बार मिलता है, उसे छोड़कर चले जाती है आत्मा, इसमें बहुत बड़ा काम करती है हमारा कुसंग। ऐसी आत्माओं का संग जो सांसारिक बातें करते हैं, जो विषय विकारों में लिप्त हैं, जिनके जीवन का कोई अलौकिक लक्ष्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति का संग मनुष्य को पतन के मार्ग पर ही ले चलता है। इसलिए अपने संग पर बहुत ध्यान दें। अगर हम किसी के संग में आकर बातों में रहते हैं तो बाबा की याद नहीं रहती। मैं हमेशा क्लासेज में ये बात पूछता हूँ और आप सबको भी चिंतन के लिए देता हूँ, आप अपने से बात करें, हमें बातों में रहना प्रिय है या बाबा के साथ रहना क्या प्रिय है? माताओं को सोच के बताना, बातों में रहना तो नहीं कहेंगे, तो यही यहाँ सब क्लास में बैठ के तो यही कहेंगे, बातों में क्या रखा है, बेकार की बातें दिमाग खराब करती हैं। लेकिन जब बातों का रस मिलने लगता है, क्या अनुभव है, बातों के रस से आत्मा मुक्त रह सकती है। सभी अपने से बात करेंगे, हमें बाबा का रस चाहिए जो बहुत श्रेष्ठ रस है, जिस जैसा सुख चारों युगों में कभी नहीं मिलता। उस रस को यदि संपूर्ण रूप से अपने जीवन में समाना है तो बातों का रस छोड़ना ही पड़ेगा। इस संसार में बातें बहुत हैं और जहाँ बातों का विस्तार है वहाँ उनमें व्यर्थ ही है, समर्थ नहीं। तो हम अपने से पूछ लें क्या पसंद है। कल बाबा ने हमारे सामने खजानों की बात भी की और संतुष्टता की बात भी की। हम सब हाथ तो उठाई देते हैं कि हम संतुष्ट हैं, तो सबसे सहज काम है ना हाथ उठा देना। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं ना, सबसे सहज काम है दूसरे को उपदेश दे देना। हमारे पास भी सबसे सहज काम है हाथ उठा देना। अच्छी बात भी है, उमंग आता है उस समय मन में कि हम हाथ उठाकर अपने उमंग का प्रदर्शन करते हैं। परंतु सभी खजानों से स्वयं को भरपूर करें और दुआएं देते चलें। दुआओं का अर्थ है, बताएंगे सिंपल भाषा में अर्थ। कल बाबा ने एक मास के लिए हमें काम दे दिया ना कि हम किसी को बद्दुआएं नहीं देंगे, और यदि कोई हमें दे दे तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो बद्दुआएं का अर्थ है दूसरों के बारे में बुरा सोचना। और जब हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो पहले ही हमारी स्वच्छता नष्ट हो जाती है, दूसरे हमारे बारे में बुरा सोच रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं, हम पर उसका प्रभाव आ गया तो भी हमारी स्वच्छता नष्ट हो गई, हम उसको स्वीकार न करें। ये एक अपने अंदर हम धारणा बना लें कि अपने मन से और बुद्धि से उस चीज को अंदर प्रवेश न करने दें, ये संकल्प की बात है। और दूसरों को अच्छे संकल्प दें। अच्छे संकल्प कैसे होते हैं? कोई व्यक्ति आपका विरोध कर रहा है, आप समाज में रहते हैं, ज्ञान में चलते हैं, अनेक बातें लोग आपके बारे में बोलते हैं, सब जानते हैं इस बात को, बिजनेस में घाटा हो गया तो 100 लोग बोलेंगे क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारियों में जाने लगे इसलिए बिजनेस में लॉस हो रहा है। बच्चे बीमार हो गए क्योंकि इन्होंने अपनी कुल देवी छोड़ दी है, शिव बाबा को पकड़ लिया है इसलिए बच्चे बीमार हो गए। तो आप सभी को ऐसी ऐसी बातें भी फेस करनी पड़ती हैं और फेस भी अच्छी तरह करनी पड़ती हैं। माताओं को भी बहुत सुनना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? जितना हम सुनेंगे और सुनकर उस चीज से प्रभावित नहीं होंगे उतने हमारे हिसाब किताब हल्के होते ही जाएंगे। बहुत माताएं ढीली हो जाती हैं, किसी ने कह दिया तुमने अपने कुलदेव को छोड़ दिया ना इसलिए ये सब गड़बड़ हो रही है, तो बाबा को ही छोड़ देते हैं। उन्हें ये भूल जाता है कि कुल देवी तो हम बोलो स्वयं हैं, छोड़ने की बात किसकी है? कुल देवता कहाँ बैठे हैं? बैठे हैं ना इधर सब, तो छोड़ा किसको है? अपने को पा लिया है, अपने समीप आ गए हैं, पहले अपने बहुत दूर थे। तो किसी भी बुरे संग में, बुरी बातों के संग में आकर बाबा को छोड़ देना, बुद्धि से नीचे आ जाना, उसका साथ छोड़ देना, अपने में थोड़ा थोड़ा संशय ले आना, ये ज्ञान के खजाने की बहुत बड़ी कमजोरी है। मैं एक बात का और उत्तर देना चाहूंगा आपको। बहुत सारे बहुत ध्यान से सुनेंगे, बात बुद्धि की भी है और बिल्कुल सिंपल भी है। बहुत सारे भाई बहने एक चीज को देखकर बाबा से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? जब देखते हैं के नीचे उसके बच्चे ऐसी ऐसी गड़बड़ कर रहे हैं, समझ गए होंगे आप, तो बाबा से बात करते हैं तुम ऊपर बैठ के क्या कर रहे हो? बाबा को शिकायत से करते हैं कि तुम तो सब देख रहे हो, ठीक है कोई मनुष्य तो इसे ठीक नहीं कर सकते पर तुम तो कर सकते हो, तुम भी नहीं करते हो, तुम्हारे राज में भी अन्याय हो रहा है, ये क्या है सब? सोच लें आप, क्या बाबा कुछ करता होगा या नहीं? उसे तो सब पता है ना कि मैं जिस कार्य का संचालन कर रहा हूँ उसमें थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो रही है। कई भाई लोग बहने इस बात को देखकर जरा कमजोर संकल्पों में आ जाते हैं कि तेरे बच्चे भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं और तू कुछ नहीं करता, बिल्कुल साक्षी बैठा है, शांत बैठा है। आप कोई फैक्ट्री चला रहे हो, आप उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हो, मालिक हो, और आपकी फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ हो रही हो, दोष तो आप पर आता है ना, लोग कहेंगे ना भाई आप ठीक करो इसको। तो मैं पूछता हूँ भाइयों से, बाबा कुछ करता है या नहीं? भाई उत्तर देंगे, करता है या केवल साक्षी रहता है? जो कुछ हो रहा है, कभी कभी जिस चीज को हम अन्याय कह देते हैं, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले समझ सकते हैं, वही न्याय है। हम केवल वर्तमान को जानते हैं और बाबा हमारे आगे पीछे के सब को जानता है, किसी आत्मा के पाप कर्मों का खाता बहुत प्रबल हो, मुझे यहाँ लगता हो कि मेरे साथ तो अन्याय हो गया, पर अन्याय नहीं हुआ, उसके पुराने हिसाब किताब समाप्त हुए, न्याय हो गया उसके साथ। यहाँ कल तो अखबार में एक परसों ऐसी अच्छी बात सुनी कि अमेरिका में एक व्यक्ति को अब से 150 साल पहले फांसी हो गई थी, दोबारा उसका केस चलाया किसी ने तो वो निर्दोष सिद्ध हुआ, उसको बरी कर दिया गया, फांसी के बाद बरी कर दिया गया। तो वहाँ जूरी में बहुत डिस्कस चला कि ये सब क्या है। तो लंदन में एक ऐसा ही हुआ, मर्डर के केस में एक सन्यासी को अरेस्ट कर लिया गया, उस पे केस चलता रहा, 22 साल वो जेल में रहा और 22 साल के बाद सिद्ध हो गया, प्रूव कर दिया कोर्ट ने कि ये निर्दोष है, इसे छोड़ दिया जाए। सन्यासी ने कहा मैं तो वैसे भी सन्यासी हूँ, अभी मुझे जेल में रहने दो, बाकी समय भी क्या करूँगा बाहर जाकर। तो उससे पत्रकारों ने पूछा तो उसने उत्तर दिया कि मैं तो जब से जेल में आया था शांत था, क्योंकि मैं जानता था इस समय तो मैंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन पूर्व जन्म में जरूर मैंने किसी का मर्डर किया था, तब मैं छूट गया हूँ, उसकी सजा मुझे अब मिल गई है, इसलिए पूरा हो गया, इसको अन्याय नहीं कहा जाएगा। तो हम सभी अपने विवेक को बहुत विशाल बनाएं, बाबा को ठीक रीति से जानें, तब बाबा में संपूर्ण निश्चय के साथ हम अपने जीवन को निश्चिंत बना सकेंगे। बाबा को संपूर्ण रूप से जानना ये अपने में बहुत सूक्ष्म बात है। मैं आपको एक और ज्ञान की भी अच्छी बात सुना दूं, आपको काम आएगी। गीता के 18वें अध्याय में एक श्लोक है, मुझे उसका नंबर तो याद नहीं, जिसमें कहा गया है कि मैं जो हूँ और जैसा हूँ मुझे संपूर्ण रूप से केवल वही मनुष्य जान सकता है जो निरंतर मुझसे योग युक्त रहता हो। तो मेरे पास जब कोई व्यक्ति बहुत डिबेट करते हैं ना भगवान के बारे में, तब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि गीता में 18वें अध्याय में ये कहा गया है, जानते हो मानते हो? कहा हाँ ये तो कहा गया है। तो आप निरंतर योग युक्त हो? नहीं। तो निरंतर योग युक्त नहीं वो भगवान को संपूर्ण रूप से नहीं जान सकता। यही बात हम सब के लिए भी है। बाबा को, उसके कार्य करने के तरीके को, उसकी संपूर्ण शक्तियों को वही आत्मा जान सकती है जो लंबा काल स्वमान में स्थित रहकर स्वयं को जान लेती है। जब तक हमने स्वयं को संपूर्ण रूप से नहीं जाना, बाबा को भी संपूर्ण रूप से जान नहीं सकते। स्वयं को संपूर्ण रूप से जानना मात्र इतना नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर कितनी शक्तियाँ समाई हुई हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी क्वालिटी छुपी हुई हैं, कि संपूर्ण सृष्टि चक्र में मेरा क्या क्या रोल रहा है, इस सब को जानना, जो स्वयं को संपूर्ण रूप से जान लेते हैं, जो अपनी शक्तियों को संपूर्ण रूप से पहचान लेते हैं, वही बेगमपुर के बादशाह बन सकते हैं। विचार कर लें आप इस बात पर। आप यहाँ बाबा के पास आते हैं, आपने अपना जीवन पवित्र बना लिया, बाहर वाला कोई व्यक्ति आपके बारे में या संस्था के बारे में कुछ भी बोलता रहे आप पर असर पड़ता है, आप समझते हैं ना बेचारा भोला है, इसको पता नहीं है, अच्छा हो ये भी बाबा के पास आकर सत्यता को पहचान ले। ठीक ऐसे ही जब हम अपने को संपूर्ण रूप से जान लेते हैं, तो दूसरों की कही हुई बातें हम पर प्रभाव नहीं डालती। अचल अडोल स्थिति के पीछे यही सबसे सुंदर रहस्य है। तो हम सभी अपने संकल्पों को दूसरों से प्रभावित होकर न चलने दें। अभी अभी बाबा की मुरली आई पिछले संडे में, बहुत सुंदर उसमें एक बात थी, वातावरण तुम पर प्रभाव न डाले, तुम वातावरण पर प्रभाव डालो। वातावरण का भी प्रभाव वो भी एक कुसंग हो जाता है जो मनुष्य को उसके श्रेष्ठ विचारों से नीचे ले जाता है। तो बाबा ने कहा, कौन शक्तिशाली है, तुम या वातावरण? हम सब भी अपने से ये प्रश्न पूछेंगे, जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आपका फील्ड है या आपका परिवार, उसके वातावरण को बनाना किसके हाथ में है? हम सबके हाथ में है। इसलिए मैं उन सब भाई बहनों से कहूंगा जो परिवार सहित ज्ञान में चलते हैं, कि अपने घर में बीच बीच में बाबा के गीत बजाते रहो। जब माताएं भोजन बनाए गीत बजा लें, बाबा की कोई टेप चला लें, ताकि वातावरण अच्छा निर्मित होता रहे। बाबा हमारे पास आता है, मैं अपनी क्लासेज में ये बात बहुत कही है, फिर आप सबको कहता हूँ, बहुत बहुत सुंदर बात है, जब हम बाबा को याद करते हैं वो हमारे पास आ जाता है। इसलिए सभी अपने अपने घर में बाबा को बुलाया करें। जैसे यहाँ बाबा आया है, वो तो प्रैक्टिकल में प्रवेश करता है, सूक्ष्म रूप से बाबा हमारे पास आ जाता है जब हम उसे याद करते हैं। आप अपने घर में बाबा को बुलाओ, उसकी उपस्थिति महसूस करो कि बाबा ऊपर से, बाप दादा दोनों हमारे घर में आ गए हैं, बाबा से वाइब्रेशन चल रहे हैं, बाबा ज्ञान सूर्य है, उसकी शक्तियों की किरणें, उसकी शांति की किरणें चारों ओर चल रही हैं। ऐसा अभ्यास तीन तीन मिनट करो, आपका घर सभी आपदाओं से मुक्त हो जाएगा। बहुत सुंदर ये बात है। मैंने ये बात अपने किचन में सदा ही अभ्यास की है। 5 साल पहले मुझे इसका संपूर्ण अनुभव हो गया था। वैसे तो बाबा कहते ही रहते हैं मुझे याद करो, लेकिन एक दिन मैं बाबा से बात कर रहा था किचन में, जब बाबा साकार में थे तो किचन में 4-5 बार आते थे, तो ऐसे ही मैं बाबा से बात कर रहा था कि बाबा अब भी आते हो क्या? तुरंत महसूस होने लगा, आवाज आने लगी मुझे कि मैं अब भी उसी तरह आता हूँ, और मुझे ये अनुभव हो गया। बहुत सुंदर ये फीलिंग थी कि बाबा को जब तुम याद करते हो वो तुम्हारे पास आ जाता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह अनुभवों से अपने जीवन में उतार ले, तो जब भी जरूरत पड़े बाबा को बुला ले। बाबा की एक बात मैं आप सभी को याद दिला दूं, बाबा ने ही कहा, उनके ही शब्द हैं, कि तुम मदद के लिए 2 भुजा वालों के पास जाते हो, 1000 भुजा वाले के पास क्यों नहीं आते? सभी अपने को देखें, जब हमें संसार में कहीं मदद की जरूरत पड़ती है, हम 1000 भुजा वाले की ओर देखते हैं या 2 भुजाओं वालों की ओर? अनुभव कर ले अपने जीवन में, 1000 भुजा वाला। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है, अपने दिल में इसको छाप लेंगे, बाबा इंतजार करता है कब मेरे बच्चे मदद के लिए मेरे पास आएं। 1000 भुजा वाला हमारी इंतजार करता है, देखता रहता है, इन्हें जरूरत है और ये इधर उधर जा रहे हैं, मेरे पास नहीं आते हैं। तो हमें किसके पास जाना चाहिए? अपने अंदर समा के जाएं आप यहाँ से। बाबा को कल यहाँ बैठे सभी ने देखा है, अपने चित्त में ये बात समा लें, बार बार अपने को याद दिलाएं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर दें, तुम्हें साथ कौन दे रहा है। मुझे शास्त्रों की एक बात बहुत अच्छी लगती थी, जब अव्यक्त बाबा ने आना शुरू किया, मैं बाबा को उस दृष्टि से देखता था। पुराणों में ये बात है, भगवान के लिए कहा, जब वो श्री कृष्ण रूप में दिखाया अवतरित हुए, तो कहा कि वो जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी होते ही सातों सागर थर्राने लगते हैं, गोपियां उसको छाछ पर नचा रही हैं। उसकी लीला का वर्णन किया है, ठीक बात है ना। तो मैं बाबा को जब देखता था, तो मैं इस नजर से देखता था कि ये वही बाबा है जिसके लिए शास्त्रों में इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं, और वो हमें साथ दे रहा है। तो क्या हमें साथ के लिए इधर उधर देखने की जरूरत है? बस उसका आह्वान करें। हम में से कई लोग क्या गलती करते हैं, मैं आपकी आपको ये बात याद दिला दूं कि कोई समस्या आई तो सोचते हैं बाबा बैठा है ना, बस वो करेगा। संकल्प तो ये ठीक है, पर इसके आगे भी करना है कुछ, और इसके आगे ये करना है कि दिनचर्या में कैसे समय में विशेष जब कोई परिस्थिति हमारे सामने खड़ी हो, बाबा मेरे साथ है या सिर पर छत्र है, इसका बहुत अभ्यास करना चाहिए। केवल बाबा बैठा है वो सब कुछ ठीक कर देगा, ये संकल्प पर्याप्त नहीं है। संकल्प तो ये श्रेष्ठ है ही, पर इस अभ्यास की जरूरत है कि सर्वशक्तिवान मेरे सिर पर छत्र छाया है। इसको आप ऐसे समय में 10 बार अभ्यास कर लिया करें, थोड़ी थोड़ी देर, चाहे 5 सेकंड 10 सेकंड एक बार हो, इसके प्रभाव से वो परिस्थिति स्वतः ही हल्की हो जाएगी। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे अपने ही अंदर परिस्थितियों को समाप्त करने की शक्तियां हैं। मैं आपको भी वो बात सुना दूं, जब हमारे यहाँ विंग्स के प्रोग्राम होते हैं तो उस पर मैं वो पूरी एक क्लास ले लेता हूँ। बाबा ने बहुत साल पहले कहा था, ये बात होगी लगभग 28-30 साल पहले की, समस्याएं क्या हैं? सभी ध्यान देंगे, सुना भी होगा आपने, ये समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। हमारा कमजोर मन, हमारे नेगेटिव विचार, हमारे इम्प्योर थॉट्स समस्याओं को क्रिएट करते हैं। मैंने जब ये बात सुनी थी तो तब से मैंने विचार किया कि यदि हमारे कमजोर विचार समस्याओं की रचना कर सकते हैं, तो हमारे शक्तिशाली विचार समस्याओं को नष्ट भी कर देंगे। और इसके बहुत सारे अभ्यास किए, और ये बात अनुभव में आ गई कि हमारे अपने ही शक्तिशाली संकल्पों में सभी समस्याओं को समाप्त करने की शक्ति है। हम उसका यूज करें अपने जीवन में और आगे बढ़ते रहें, तो सभी बाबा के पास से कल के इस मिलन से ये संकल्प दृढ़ता पूर्वक ले जाएं कि मुझे कौन साथ दे रहा है। गूंजती रहे ये आवाज हमारे अंतर्मन में, मुझे वो साथ दे रहा है जिसने मुरलियों में स्वयं कहा है कि यदि मैं चाहूं तो 1 सेकंड में इस कलियुगी संसार को स्वर्ग बना दूं। लेकिन बाबा ऐसा करते नहीं हैं, हम सबके द्वारा कराते हैं। ऐसी सर्वश्रेष्ठ शक्ति ऑलमाइटी ऑथोरिटी हमें साथ दे रही है, ये संकल्प हम अपने चित्त में समा लें। यहाँ से यही गिफ्ट सब साथ ले जाएंगे इसको कभी कभी भूलेंगे नहीं और अभ्यास करेंगे। यदि आप रोज ऐसा अभ्यास करें तो जीवन समस्याओं से मुक्त हो जाएगा कि सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, परम धाम में नहीं, सिर के बिल्कुल ऊपर छत्र छाया है। करके देखो आप, जिन्होंने ये अभ्यास बहुत किया होगा उन्हें अनुभव होंगे, चारों ओर विनाश होगा, प्रकृति फट रही होगी, धरती फट रही होगी और वो सेफ रहेंगे। जिधर ऐसी आत्माएं चलेंगी तो अनेक मनुष्य सुरक्षित हो जाएंगे। जो छत्र छाया के अंदर रहने के अभ्यासी होंगे, माया उनके पास कभी नहीं आएगी। और आप ये अनुभव कर सकते हैं कि जीवन सभी विघ्न और समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। मैं अब आखिर में आपको योग का एक तरीका बता देता हूँ, जो बाबा ने अपने संदेश में पीछे बताया है। इससे पहले आप सभी को कल की वो बात भी याद दिला दूं, 6 मास बाबा ने हम सभी को एक चैलेंज के रूप में दिया है। और हम सब में जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, सभी यहाँ श्रेष्ठ आत्माएं बैठी हैं, वो अपने अंदर उमंग भर लें कि भगवान के द्वारा दिए गए चैलेंज को हम पूरा करेंगे। हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और ये सत्य है। आप सभी अंडरलाइन कर लें कि जो इन 6 मास में बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे उनके ऊपर विजयी रत्न बनने की स्टैंप लग जाएगी। तो एक बहुत सुंदर अवसर है, जब जब बाबा ऐसे काम हम सबको देते हैं तब उसकी शक्तियां हमसे जुड़ जाती हैं, यदि हम उनको करने की उमंग रखते हैं। तो अपने जीवन में हर एक ऐसा प्लान बनाएं कि हमारा योग भी बहुत अच्छा चले, बाबा की पालना मिलती रहेगी हमें मार्च तक तो ऐसे ही, और रोज ही मिलती है, उसके आधार से हम बहुत उमंग उत्साह में रहें। योग की वो बहुत सुंदर और सरल विधि है, आपने सभी ने चित्रों में देखा है, ब्रह्मा को, सरस्वती को, देवियों को कमलासन पर बैठा हुआ दिखाते हैं। ये यद्यपि उनकी स्थिति का यादगार है, पर हम ऐसा अभ्यास करेंगे, मैं कमल आसन पर विराजमान हूँ, फरिश्ता हूँ, कमल आसन ही मेरा वाहन भी है, इस आसन को बैठकर मैं जहाँ चाहे उड़कर जा सकता हूँ। जैसा अपने को स्थित करें, मैं कमल आसन पर हूँ और सर्वशक्तिवान की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। बस सिंपल, सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मैं कमल आसन पर विराजमान हूँ। और बिल्कुल सिंपल करने के लिए, मैं कमल आसन पर और मेरे सिर के ऊपर से बाबा छत्र छाया। तो योग अभ्यास में हम सभी इस चीज का ध्यान रखें कि निर्संकल्प होने का संकल्प न करें, बल्कि अपने को ऐसे अच्छे अच्छे संकल्प दें, श्रेष्ठ संकल्पों के बल से निर्संकल्प होंगे तो निर्संकल्प स्थिति लंबा समय चलेगी और बड़ी आनंदकारी होगी। ऐसा अभ्यास हम सभी करते रहेंगे तो सभी यहाँ से जाएंगे कमल आसन पर बैठते हुए बाबा की छत्र छाया के नीचे रहेंगे। अब हम 3 मिनट के लिए ऐसे ही अभ्यास में बैठते हैं, सभी कमल आसन पर आ जाएं, सर्वशक्तिवान की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं, सभी किरणों के नीचे सर्वशक्तिवान अपनी ओर से अपनी संपूर्ण शक्तियां हमें दे रहे हैं। हमारे ऊपर शक्तियों का एक रंग बिरंगा फाउंटेन उतर रहा है।
प्यारा
प्यारा।